सच्चाई आवश्यकता से अधिक ये हो ही कैसे सकता है? तब तो फिर ईश्वर सबसे ज्यादा कमजोर होना चाहिए। ऐसा नहीं है, दुर्गुण ही थे, अध्यात्म जीवन में नहीं था, हमारे देश में मनुष्य का मूल्य नहीं था, ये कमजोरी रही। ये तो अभी अभी आए,
इन लोगों ने यही लिखा है कि हमारे धर्म में भारत में अरविंद घोष ने इन सब लोगों ने लिखा है कि भारत में मानवीय मूल्यों की वाचा की मूल्यों की।
रवि ठाकुर की गीतांजलि का एक पढ़ा है आपने, ए आमार अभागा देश, है ना? ऐसा कुछ है, तुमने मनुष्य का अपमान किया है इसलिए मनुष्य के लिए तुमको नीचे उतरना पड़ेगा। वो बहुत प्रसिद्ध है रवि ठाकुर का। हाँ, लेकिन मानवीय मूल्य नहीं थे और जो थे वो बहुत थोड़े लोगों के लिए थे, इसलिए मानवीय नहीं हो सके वो। यही मैंने कहा कि पवित्रता थी तो बहुत थोड़े लोगों में थी और दूसरे लोगों की अपवित्रता पर वो खड़ी थी, इसलिए वो पवित्र नहीं रह सकी।
तो ये भी कारण हो सकता है कि भाषा बीच में थी, सब ज्ञान संस्कृत भाषा में सीमित था और हिंदी और ये सब भाषा में कोई ज्ञान नहीं था, धर्म का नाम जनता सुरक्षित।
अब ये भी कहना बहुत मुश्किल है संस्कृत सबकी भाषा थी कि नहीं।
तो तुलसीदास जब रामायण की रचना की तो पंडितों ने बहुत विरोध किया।
हाँ, लेकिन स्त्रियों की भाषा संस्कृत थी कि नहीं इसमें शक है। कालिदास के नाटकों में सारी स्त्रियां प्राकृत बोलती हैं, यहाँ तक कि सीता भी अज्ज उत्त कहती है राम को, आर्य पुत्र कह नहीं सकती है। तो ये सब ये बहुत मैंने इसको बहुत सोचा है, अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि संस्कृति जब मुट्ठी भर लोगों तक सीमित हो जाती है तो वो असंस्कृत हो जाती है। संस्कृति सार्वत्रिक होनी चाहिए, पवित्रता दूसरे की अपवित्रता पर खड़ी नहीं रहनी चाहिए, स्वच्छता दूसरे की अस्वच्छता पर न खड़ी हो, भंगी की अस्वच्छता पर हमारी स्वच्छता निर्भर न हो। एक जाति ही अस्वच्छ लोगों की हो जाए और फिर बाकी का समाज अपने को स्वच्छ रखे तो वो स्वच्छता अपवित्र है। स्वच्छता भी पवित्र होनी चाहिए, पवित्रता के साथ होनी चाहिए। तो अब संस्कृति को सार्वत्रिक बनाने की आवश्यकता है और ये स्त्रियां क्यों कर सकती हैं कि छूत और अछूत पुरुष की अपेक्षा उनमें अधिक रहा है। स्त्री ने छूत और अछूत को पुरुष की अपेक्षा अधिक माना है और इसे लोगों ने कहा भी कि हमारे धर्म की और हमारी संस्कृति की रक्षा ही स्त्रियों ने ही की, क्या की चूल्हे चक्की में रहकर की, कौन सी की जिस संस्कृति को हवा नहीं लग सकती है, वो कोई संस्कृति नहीं है, उसको ताले में बंद रखने से संस्कृति सुरक्षित नहीं रहेगी लेकिन वो संस्कृति नहीं रहेगी। संस्कृति स्वतंत्रता में ही पनपती है और वो स्वतंत्रता स्त्री की भी होनी चाहिए, अंतिम स्त्री तक, भंगी की स्त्री तक। तो ये संदेश पढ़ी लिखी लड़कियां लेकर जाएं गांव गांव में और स्त्रियों को जगाएं कि तुम्हारी हालत खराब इसलिए है कि डर है, और डर किस चीज का? असल में ये बड़ी विचित्र बात है, स्त्री जान से नहीं डरती है ज्यादा। अगर जान देने का मौका आए तो मैं समझता हूं स्त्री पुरुष से आगे बढ़ जाएगी, वो सती तो हो ही जाती थी, कोई पुरुष तो सता हुआ नहीं, बच्चे के लिए वो जान दे देगी। स्त्री में जान देने की शक्ति है लेकिन जान देने के कॉन्शियसनेस नहीं है। जान देने की शक्ति निर्भयता की जड़ है, ये वो समझी नहीं। इतना समझ भर ले कि जान देने की मुझ में जो शक्ति है इसी में मैं, मेरी स्वतंत्रता और निर्भयता निहित है, इसमें छिपी हुई। इतनी सी बात उसको समझनी है।
दादा, हम पढ़ी लिखी लड़कियों का प्रश्न ले तो यहाँ उनके घरों में एक ऐसा हो जाता है कि उनके पिता को भी लगता है कि हाँ मेरी बेटी, बेटे जैसे ही, बेटे जितने ही स्वतंत्रता ले, मगर पिता को हमेशा ही होता है कि मेरी लड़की दूसरे के घर, अपने आप ही ढूंढ निकाले वो घर में जाए, मगर वो दूसरे के घर में जाएगी तब उसे वहाँ एडजस्टमेंट करनी होगी, तो एडजस्टमेंट अल्टीमेटली वो लड़की ही करे ऐसा समाज ने मान लिया है, इसलिए पिता चाहे तो भी अपनी बेटी को इतनी स्वतंत्रता नहीं
क्या है। बहुत अच्छा सवाल है। समाज कहाँ है मुझे दिखाओ।
उन्होंने माना हुआ समाज
तो मिथ है ना, मानी हुई चीज है। समाज कहीं है? हर पिता अगर कहता है तो फिर समाज कहाँ है? अलग। हर पिता दूसरे पिता को समाज मानता है, यही हुआ ना। मैं तुमको समाज मानता हूं, तुम मुझे समाज मानती हो, तो अब एक दूसरे को ही मानना रहा ना। तो समाज में वास्तविकता रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप ही सोसाइटी है। अब इसको बदलना है। जो पहली लड़की गई होगी स्कूल में उसका क्या हाल हुआ होगा? जिस पहली स्त्री ने जूता पहना होगा उसका क्या हाल हुआ होगा? तो इसके लिए सहना तो पड़ेगा ही। ये गांधी नंगे बदन चला गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो क्या हुआ? कुछ इसमें हिम्मत की जरूरत होती है। समाज हिम्मत वाले के पीछे चला जाता है लेकिन उससे पहले परीक्षा करता है, इम्तिहान लेता है, उसको चिढ़ाएगा, सताएगा, उसके मजाक उड़ाए, मखौल करेगा, ये सब करेगा, विरोध करेगा, धमकियां देगा, इसके बाद भी जो रह जाएगा उसके पैरों पड़ेगा। ये समाज का स्वभाव है। तो ये करना पड़ेगा। पहले तो लोग ये मानते थे ना कि लड़कियां, स्त्रियां पढ़ लिख जाएंगी तो ये सिर्फ लव लेटर से लिखेंगी। ऐसा धर्म शास्त्रों में लिखा है। तो ये तो मानने की चीज है, क्योंकि वो रुक्मिणी ने लव लेटर लिखा। पढ़ी लिखी स्त्री का तो एक ही उदाहरण दिखता है, रुक्मिणी का, तो उसने लव लेटर ही लिखा श्री कृष्ण को। नहीं, तुम इसको गंभीरता से सोचो। अब मौका आ गया है। मौका इसलिए आ गया है कि अब शस्त्र का युग बीत रहा है। अब दुनिया में शस्त्र और शरीर, शारीरिक शक्ति सिर्फ सर्कस के लिए रह जाएगी, एक्रोबेटिक फीट्स। अब उसका जीवन में कोई उपयोग नहीं रहने वाला है। बहुत जल्दी वो जमाना आ रहा है। विज्ञान को धन्यवाद देना चाहिए कि चाहे जितना गामा पहलवान भी हो तो भी एक बटन दबाकर उसको खत्म किया जा सकता है, और बड़े से बड़ा शहर हो तो भी ऊपर से बम डालकर उसको समाप्त किया जा सकता है, और किसी के पास बड़ी गदा भी हो तो क्या करेगा, वो सिर्फ घुमाता ही रहेगा क्या, और कुछ नहीं कर सकेगा। तो ये संहार का युग है, शस्त्र का युग नहीं, ये युद्ध का युग नहीं, इसमें युद्ध हो ही नहीं सकता है, संहार होगा, कत्ल का युग है। युद्ध में वीरता थी, कत्ल में किसी प्रकार की वीरता नहीं है, क्रूरता है। संहार में क्रूरता है, युद्ध में वीरता के लिए अवकाश था। तो अब तो स्त्री के लिए अच्छा दिन आ रहा है, जब शारीरिक शक्ति एट ए डिस्काउंट, उसका भाव उतर रहा है, शस्त्र शक्ति का भाव उतर रहा है, ये विज्ञान की कृपा है। तो मैं कह रहा हूं कि अब ये युग आ रहा है, और दूसरा अब वो उस मुकाम पर स्त्री पहुंच गई है कि अब आगे का कदम उसका शारीरिक शक्ति से कोई भिन्न शक्ति का नहीं होता है, तो अब वो ठिठक जाएगी, उसको लौटना पड़ेगा, बैक टू पॉट्स एंड पैन्स। या तो वो आगे बढ़े या लौटे। तो आगे बढ़ने का साधन क्या हो सकता है, शारीरिक शक्ति से किसी भिन्न शक्ति का विकास करना, जो गांधी ने किया, शस्त्र शक्ति से एक भिन्न शक्ति का विकास किया। इसलिए गांधी किसी सेना के सामने परास्त नहीं हुआ। वैसे ही स्त्री को शारीरिक शक्ति से अलग किसी शक्ति का विकास करना होगा, और इसी शक्ति की तरफ मैंने निर्देश किया है कि उसको पुरुष की शारीरिक शक्ति का डर छोड़ देना। शस्त्र का डर गांधी ने छोड़ा, पुरुष का डर स्त्री को छोड़ देना होगा, और जिस दिन पुरुष का डर स्त्री छोड़ देगी उस दिन उसको प्यार करने लगेगी। आज स्त्री का दिल इतना छोटा है कि वो प्यार नहीं कर सकती पुरुष को, जैसे उपन्यासों का प्यार वगैरह, ये कुछ प्यार नहीं है, सिनेमा वगैरह कुछ प्यार नहीं, नाग गीत गाती हैं लड़कियां, लड़के उनमें कुछ प्यार और कुछ नहीं। जहां डर है वहां प्यार कहां से होगा। डर ना हो तभी प्यार हो सकता है। हाँ, तो प्यार नहीं है, हम यमराज से भी डरते हैं, इसीलिए भगवान से डरते हैं। असल में परलोक का हमारा अधिष्ठाता यमराज है, भगवान नहीं है। यानी छुटपन में तो मुझे यहाँ तक लगता था कि ये भगवान मर जाए तो अच्छा है, क्योंकि इसे डर नहीं पड़ता था। सारी कविताओं में ईश्वर कर डर मन में राखो, जिससे आदमी डरता है उसको प्यार नहीं कर सकता। ईश्वर से डरे वो नहीं, उसको प्यार करो। माँ से जितना निर्भयता के साथ माँ से व्यवहार करते हो, उतनी निर्भयता के साथ ईश्वर से व्यवहार हो सके। तो ये कुछ चीजें हैं जो सिखाइए उनको। जैसे अब इसमें जेपी की इसमें करना है ना, तो निर्भयता की जरूरत तो होगी, वोट देने स्त्रियां जाएंगी, वोट छीना जाएगा, खरीदा जाएगा, इसका विरोध कौन करेगा? पढ़ी लिखी लड़कियों को और गांव की लड़कियों को इसके लिए तैयार करना चाहिए कि जत्था लेकर जाएं, वोट खरीदने नहीं देंगे, वोट छीनने नहीं देंगे, तब तो लोकतंत्र इस देश में बचेगा, नहीं तो लोकतंत्र कहां से बचेगा? ये इंदिरा जी को पत्थर मारने से तो बचने वाला है नहीं। हो सकता है कि दयालु लोगों को उनकी दया आने लगे तो उल्टा हो जाएगा। जुल्म करने वाली वो थी, ये चीज बदल जाएगी।
दादा, do you consider the role of men and women is different or not? Do you consider the role of men and women as different or not?
ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। भिन्न है लेकिन विरुद्ध विरुद्ध तो नहीं है ना? समझती हो ना? जैसे मैं अपने बेटे का बाप हूं और अपने बाप का बेटा हूं तो रिलेशनशिप अलग है, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि बेटे का मालिक हूं और बाप की प्रॉपर्टी हूं। ये फर्क होता है ना, भिन्न से मतलब भिन्न है ही लेकिन तुल्य होना चाहिए ना। एक यूनिफॉर्म नहीं, डिफरेंट होगा लेकिन डिस्पैरिटी तो उसमें नहीं होगी। डिफरेंस अलग चीज है, डिस्पैरिटी अलग चीज है। आज तो डिस्पैरिटी है, सेकेंडरी रोल है, उसको उससे ऊपर उठना है। डिफरेंट तो रहेगा ही, ये माँ है वो बाप है, ये तो डिफरेंस रहेगा ही।
स्वतंत्रता की बात में स्त्री को मातृत्व
के
नाते थोड़ा तो
मैं समझता हूँ कि किसी के काम के दाम होने ही नहीं चाहिए। ये तो तुमने सुना होगा ना, मैंने कहा कि काम का दाम कैसे हो सकता है? मातृत्व क्या फंक्शन है क्या? इकोनॉमिक, वो माता बनती है तो क्या कोई ऐसी सर्विस है जो उसका कोई उसके लिए बदला मिल सकता है?
नहीं नहीं, इसके लिए उसका इकोनॉमिक फील्ड में
मैं कहता हूँ कि इकोनॉमिक क्यों कहती हो उसको?
नहीं, वो कहाँ काम कर रही है और
तो वो काम नहीं, वो मैं कहता हूँ ना कि उस काम के दाम ही नहीं। काम कर
वो काम में अपना पूरा
काम, ये भी ये आ गई ना इधर कन्फाइनमेंट में चली गई तो काम ही है ना। तुम जो चाहती हो कहना वो ये चाहती हो कि उसके काम से उसको छुट्टी मिलनी चाहिए और तनख्वाह भी मिलनी चाहिए।
नहीं नहीं, वो मैं नहीं कहना चाहती हूँ, मगर वो अभी चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट का काम कर रही है और वो अपने मातृत्व के आने से इसके बाद भी उसको अपने बच्चे को पालने पोसने में पिता से ज्यादा समय लगाना होगा,
लगाएगी
तो उसको अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट का रोल है, दाम छोड़िए गायनेकोलॉजिस्ट का रोल है वो तो सेवा ही है, तो उसके वहाँ
दोनों सेवाएं है ना,
मगर तब पति भी अपेक्षा रखेगा कि मैं
क्यों रखेगा? वही तो मैं कहता हूँ, ये वो उसकी तो उसका दोष है, वैल्यूज का सवाल है ना। पति अपेक्षा क्यों रखेगा? वो बाहर का मजदूरी करके भी आए और फिर चूल्हा भी सुलगाए। आज सब पढ़ी लिखी लड़कियां तो करती हैं। अब मेरी सारी बहू हैं, ग्रेजुएट और एमए तो हैं, लेकिन मुझे हमेशा शक होता है कि वो अपना दस्तखत भी कर सकती है।
Why do you think the Indian male has a sort of word mother?
Not only the Indian male.
No, it's not so much in outside, you know.
Outside, that is because emotional values have changed.
Isn't it also true that there is a greater mother dominance in this country than anywhere else?
It's such an imbalance. Either a woman is, immortalized as a mother or treated as an object,
no, imagine. This idolization of the mother, ये भी उसकी slavery का एक अंग है स्त्री की। देखो माता बनी तो स्त्री बड़ी हुई और नहीं बनी तो छोटी रह गई। तो बगैर पुरुष के तो माता नहीं बन सकती है ना, तो पुरुष के दरवाजे जाना पड़ेगा। इट्स अ सेटल वे, दूसरा है क्या उसमें।
बट एज अ मदर देयर इज शी हैज ग्रेटर डोमिनेंस
इजंट इट, एज अ मदर ओवर द चिल्ड्रन। लेकिन वो जब बचाने का समय आएगा तो पुत्र से ही कहेगी कि मुझे बचा। ऑलवेज बच्चा जब तक छोटा है तब तक माँ की के दामन में छिपता है और माँ बड़ी होते ही सबसे पहली उसकी अपेक्षा यह होती है कि बेटा मुझे बचाएगा, नहीं तो है किस लिए वो बेटा। वो है माँ पिता रक्षति कऊ मारे, शादी के बाद भरता और बूढ़ी होने पर पुत्र। न स्त्री स्वातंत्र्य अर्हति, आखिर में ये कह दिया कि वो इसलिए स्वतंत्र नहीं हो सकती। इसका मातृत्व बहुत बड़ा गौरव है स्त्री का और उसके लिए उसके शरीर में योजना भी है, इसलिए मातृत्व की आकांक्षा स्वाभाविक भी है। मेरा कहना इतना ही है कि मातृत्व अनिवार्य न माना जाए, जैसे पुरुष के लिए पितृत्व अनिवार्य नहीं है। अब सारी जितनी देवियां हैं वो पुरुष ईश्वर की पत्नियां हैं, लक्ष्मी भी विष्णु के पैर दबाती है, इसलिए माता ऐसी होनी चाहिए कि जिसके पति है ही नहीं। मातृत्व के आइडियल का यह अर्थ है कि वो जगन माता है, वो विश्व माता है जिसका कोई पति नहीं, सभी पुत्र हैं और पुत्र भी ऐसे शरीर के नहीं तने नहीं, उसकी कोख में से नहीं पैदा हुए कोई पुत्र। तो पति विहीन मातृत्व इसको मैं मानता हूं कि जिसमें पति की कल्पना नहीं है। तो देवी के बारे में दोनों बातें कही गई हैं, वो सबकी माता है यानी अपने पति की भी माता ही है। तो यह हो सकता है, नहीं तो माता इतनी बड़ी मानी गई लेकिन उसका पति तो उससे बड़ा माना गया। तो ये जो कन्फ्यूजन तुम कह रही हो वो सही कन्फ्यूजन।
देवी का आराधना करने के लिए तो उनके पति भी जाते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवी के सामने खड़े हुए प्रार्थना
करते थे ना, तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि प्रार्थना भी करते थे और पति भी बनते थे।
पति तो थे
ही, प्रार्थना और पैर भी दबाती थी वो। एक्सट्रीम नहीं, वो कंफ्यूजन है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उसकी रियलिटी को देखिए कि स्त्री के लिए मातृत्व गौरव की चीज है, बड़ी चीज है, उसकी स्वाभाविक आकांक्षा है, उसकी परिपूर्ति होनी चाहिए। लेकिन मातृत्व की अनिवार्यता जो मान ली गई, बस उतने से बचना है।
तो पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो आवश्यक ही हो गया।
ये तो जबरदस्ती की चीज, ये कोई सांस्कृतिक चीज थोड़ी है, जबरदस्ती की चीज आई, ये तो अलग चीज है, कंपल्शन हुआ। ये ऐतिहासिक दृष्टि है, सांस्कृतिक दृष्टि नहीं है। सांस्कृतिक दृष्टि से सोच रहा हूँ, ऐतिहासिक दृष्टियाँ बदलती चली जाएंगे।
बोलते हैं कि कोई भी स्त्री आदमी से सिक्योरिटी के लिए शादी करती है, जब भी पति सिक्योरिटी न भी दे सके, वो स्त्री के दृष्टि से नादान भी हो तो छोड़ती नहीं उसे, क्योंकि उसमें सहनशीलता ज्यादा है।
सहनशीलता नहीं है, मजबूरी है, यानी वो एक भावनात्मक चीज हो जाती है आगे चलकर। मैं कई बार मैंने देखा, अपनी माँ को देखा, मेरी माँ बूढ़ी थी और वो मेरे 5 साल के बेटे को साथ लेकर जाती थी, बाहर जाती थी, तो कहे, मैं कहा इसको लेकर क्या करती है, तो वो ये कोई पुरुष साथ चाहिए, बस इतनी उसके दिमाग में एक चीज थी। अब ये आज हमको ऐसी मालूम होती है चीज, लेकिन इसको जड़ तक जाकर देखें तो ऐसा मालूम होगा कि स्त्री की बहुत सी ऐसी जो कमजोरियां हैं, इसी तरह से साइकोलॉजिकल है। कोई कारण नहीं है कि इतनी कमजोर हो अपने आप को समझे। एक जो जहां जाकर रुक जाता है, उतनी चीज मैंने कह दी, लेकिन उसको लेकर सारा का सारा उसका जीवन ऐसा हो जाए, ये ठीक नहीं है। और आज का तो युग पुराने युग से बहुत अच्छा है। फिर भी पहले तो स्त्री निकल भी नहीं सकती थी बाहर, अब तो खुलकर घूमती है, सब कुछ करती है। और लड़ाई झगड़े यानी दंगे और युद्ध का समय छोड़ दिया जाए तो बलात्कारों की संख्या भी ऐसे कम ही है। मनुष्य की प्रगति बहुत हुई है सांस्कृतिक दृष्टि से। अब उसके बारे में लोगों में विवाद है, गांधी के जमाने से ही था। कुछ शास्त्री ऐसे थे जो लक्ष्मण शास्त्री, श्री शास्त्री पाठक, बहुत से कुछ शास्त्री ऐसे थे जिन्होंने ये खोज की कि वहाँ अस्पृश्यता उस जमाने में थी ही नहीं। दूसरे ऐसे थे जिन्होंने दिखा दिया कि थी, उनमें शंकराचार्य वगैरह भी थे बहुत से। तो मुझे इतना ही कहना है कि शास्त्रों का बहुत इसमें नहीं मानना चाहिए, हो सकता है उस वक्त रही होगी
समाज में, सैद्धांतिक रूप से थी नहीं थी, बाद में शायद आ गई।
अस्पृश्य का है ना, वो एक स्तोत्र है, मैं सब भूल जाता हूँ, लेकिन मैं शब्द नहीं याद आते मुझे। लेकिन उसमें आखिर कहाँ पहुंचे कि हम आत्मा से एक हैं, शरीर से नहीं। तो शरीर तो अपवित्र ही रहा, आत्मा की कौन जानता है। सूअर की आत्मा और मेरी आत्मा भी एक हो सकती है। तो आत्मिक एकता बिल्कुल अलग चीज है, हम तो शरीर की ही बात कर रहे हैं।
आत्मिक एकता होने की बात तो मानवता दृष्टिकोण आना ही चाहिए,
कैसे, यही मैंने बताया है ना। हाँ, तो वो सुअर का मेरी भी एकता है ना। वो शास्त्री बड़े जबरदस्त थे, उन्होंने कहा कि गाय भी माँ है और मेरी माँ भी माँ है, इसलिए इसको क्या घास खिलाऊंगा और उसको रोटी खिलाऊंगा।
वो तो गाय का स्वाभाविक भोजन ही था,
स्वाभाविक खाना तो उतना फर्क तो करूंगा कि नहीं। इसलिए उन्होंने उस पर भाष्य लिखा कि समदर्शी ना है समवर्ती नहाने। वो तो बाल की खाल निकालने वाले लोग थे, लेकिन उसमें क्या होगा।
दादा आपने कहा ना कि गांव में जाके समझाना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत कोशिश तो होगी लेकिन और भी मदद की जरूरत होगी। एक मैं केस बताती हूँ जहाँ ट्राई किया है। एक औरत है, मजदूरी का काम करती है पंचकनी के पास। उसका हस्बैंड उसे छोड़ के चला गया है, किसी और औरत के पास रहता है। गांव में उसने छोटी सी झुग्गी बना रही है, एक 6-7 साल का लड़का है, पूरा दिन मजदूरी करती है, उसकी देखभाल करती है। उसका हस्बैंड जब आता है, जब मन आता है पी के आता है, वैसे आता है, जैसे आपने कहा ना, उसको मारता है, उसकी उसके पैसे लेता है, जो भी चाहे करता है, और ये कुछ कर नहीं सकती। उसके माँ बाप उसको वापस नहीं चाहते हैं और ना उसे किसी और से मदद मिलती है। अब ऐसी औरत जिसके आसपास वाले भी नहीं, अगर वो कुछ करना भी चाहे आसपास वाले भी नहीं मदद करें, वो क्या कर सकती है उसे।
तो ऐसी औरतों को ही मदद करनी होगी हमको। अब हम लोग जहाँ रहते थे कुछ दिन, वहां भी ऐसी औरतें आती थी हमेशा, तो जितनी मदद हो सकती है करते थे। और तुमको सबको एक होकर उसका मुकाबला करना चाहिए वो शराबी का, कि क्यों कोई शराब पीकर आ सकता है इस तरह। अब कुछ संस्थाएं ऐसी हैं स्त्रियों की जो उन लोगों उन स्त्रियों को रख लेती हैं और जाने नहीं देती, वहां आने नहीं देती उनके पतियों को। लेकिन ये स्त्री भी इतनी तैयार चाहिए ना जो वहां रह सके रहे। स्त्रियों को इस तरह से एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यह हो सकता है
दादा। तो ये जा रही है टेप, इसलिए मैं चाहता हूँ वो कहानी बता दीजिए। आपने आज कोई कहानी नहीं बताई।
तो कहानी यही इन लड़कियों क्या कहानी
बताई। नहीं ये भी सुनेगी तो उसमें क्या है, वहाँ भी बड़े लोग अच्छी थी कहानी।
रियल दादा बना दिया।
ओवर नहीं, वो टेप में जाना है महाराष्ट्र में इसलिए।
वो कहानी ऐसी है कि एक दफा सुंदरवन में सारे जंगली जानवरों की एक बड़ी परिषद हुई। अब उसका अध्यक्ष तो किसको बनाए, मनुष्यों में अध्यक्ष चुना जाता है, जंगल में तो सिंह अपने आप अध्यक्ष बन जाता है। उसका वर्णन ही है, नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेंद्र का। वो अपने आप ही मृगेंद्र होता है, बैठ गया अध्यक्ष होकर। मुख्य वक्ता कौन हो, हमारे यहाँ तो कोई भी हो सकता है मरियन, लेकिन वहां तो जंगली जानवर सब थे, तो हाथी मुख्य वक्ता हुआ। विषय क्या था, मनुष्य को भगवान ने क्यों बनाया होगा, ये विषय था। तो हाथी कहने लगा, सभापति महोदय मेरी तो समझ में ही नहीं आता इसको क्यों बनाया होगा। आपकी तरह इसके पहने दांत नहीं है, तेज नाखून नहीं है, मेरी तरह ढील डॉल नहीं है, क्यों बनाया होगा। एक के बाद एक एक आया भाषण करने। बैल आया, वो कहने लगा कि मैं तो अशराफ गो माता का बेटा समझा जाता हूँ, लेकिन मेरे भी भगवान ने सींग दिए हैं, इस कमबख्त को तो सींग भी नहीं दिए। हिरन आया कि मैं तो उछल सकता हूँ, ये उछल भी नहीं सकता, इसके तेज कदम भी नहीं दिए भगवान ने, इस तरह ये बिल्कुल बेचारा है। कोई इसकी शरीर में इसके बचाव के लिए भगवान ने किसी तरह की का इंतजाम नहीं किया। तो अब बस प्रस्ताव पास होने लगा कि इसलिए सारे जंगली जानवरों को मिलकर मनुष्यों के उद्धार के लिए पंचवार्षिक योजना बनानी चाहिए। इतने में वो खड़ा हो गया सियार मिस्टर रेनियर्ड द फॉक्स। सभापति महोदय, मैं सवाल पूछना चाहता हूं। क्या जरूर पूछ सकते हो? द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इट, द हाउस एडमिट्स इट। क्या सलाह, किससे सवाल पूछना है? तो सवाल पूछना है एक तो सभापति महोदय आपसे, और दूसरा मुख्य वक्ता महोदय हाथी से। तो आपसे सवाल जो पूछना है वो यह है कि आप मनुष्य की सर्कस में नाचते हैं, क्योंकि भाई मनुष्य भी आपकी सर्कस में नाचता है। और हाथी महोदय से पूछना है कि आपकी पीठ पर मनुष्य सवारी करता है कि कभी मनुष्य की पीठ पर भी आप सवारी करते हैं? तो सभापति महोदय ने जवाब दिया कि लोकहित में इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जा सकते। इसमें संकेत इतना ही है कि मनुष्य में वो शक्ति है कि वो शेर को भी नचा सकता है और हाथी पर भी सवारी कर सकता है। ये जो शक्ति है यह मनुष्य के शरीर की शक्ति नहीं है। यह शक्ति गांधी में थी, और अब समय आ गया है कि स्त्री को अगर पुरुष की बराबरी पर आना है तो गांधी जैसे सिपाही की शक्ति से अलग शक्ति का विकास करके बढ़ सका, उसी तरह पुरुष की शक्ति से अलग तरह की शक्ति का विकास करना हो। और इसे मैंने कहा है कि उसकी स्वतंत्रता के साथ पवित्रता की शक्ति आनी चाहिए। इसे मैंने उस दिन कहा कि ये ब्रह्मचर्य का सामाजिक मूल्य है। स्त्रियों से अधिक अपेक्षा नहीं है, इसलिए नहीं है कि जहां शारीरिक कमजोरी अधिक होगी वहां इस शक्ति की आवश्यकता भी अधिक होगी। गांधी के पास शस्त्र शक्ति नहीं थी, इसलिए इस दूसरी शक्ति की आवश्यकता अधिक थी। स्त्री के पास अगर शारीरिक शक्ति कम है तो इस दूसरी शक्ति, जिसे मैं पवित्रता की स्वतंत्रता की शक्ति कहता हूं, इसकी आवश्यकता अधिक है। तो यह तो पहले पढ़ी लिखी स्त्रियों को समझ लेना चाहिए, बाद में गांव की स्त्रियों को समझाना चाहिए। वो तो बेचारी आज कहीं भी नहीं है ना, संस्कृति उन तक कभी पहुंची ही नहीं, फिर भी उनमें निर्भयता, स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता भी पढ़ी लिखी स्त्रियों से अधिक है। इसलिए उनके पास से हम कुछ सीखें और उनको यह सिखाएं कि इस तरह की शक्ति का विकास करना आवश्यक है, तभी स्त्री की नागरिकता वास्तविक होगी, तब तक नहीं हो सकती। यही कहानी थी ना।